दूसरा ग्रुप कुमारों से मुलाकात। कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहां बाप है वहां सदा ही अचल अडोल होंगे। जहां सर्वशक्तिमान होगा वहां सर्वशक्तियां होगी। सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती, इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एकरस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसीलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एकरस स्थिति में स्थिति रहने वाले, स्थित रहने वाले, स्थिति लिखा है। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एकरस स्थिति में रहने वाले हैं। 30 जनवरी 1988, ग्रुप नंबर 2, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल।
थोड़ा कुमारियों के लिए बोल दें, बहुत सारे फोन आते हैं, बोला वो कुमारों को आगे रखा जाए।
नहीं, ये पूरा होने के बाद में नेक्स्ट सीरीज कुमारियों की चालू करेंगे, थोड़ा बचा है। कुमार
मात्रे घुमानी
कहो कुमारियों कहो, एक ही चीज है जब यहाँ बातें हो रही है। तो कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, अचल अर्थात
फिर
स्थिर, अचल अर्थात
चलने
इसका अर्थ चलने से ज्यादा चलायमान होने से ज्यादा अर्थ अधिक है। जो चलायमान नहीं, जैसे होते ना चलायमान टापू होते, कोई कोई घूमते रहते हैं यहाँ से वहां, तो जो चलायमान न हो, एक अर्थ उससे है, मूविंग मूवमेंट से एक अर्थ है कि जो मूवमेंट न करे, चलायमान न हो, अचल हो, एक तो अर्थ है इससे है। दूसरा अर्थ स्थिर, वो एक ही हो गया, स्थिर स्थिति तो दूसरी बात है शब्द का। दूसरा अर्थ चंचलता से है, जो चंचल ना हो, तो अचल। फिर है अडोल,
डोलायमान
जो डोलायमान ना हो, जो डगमग ना हो, तो अचल और अडोल। कुमार अर्थात ये दो शब्द, जो अचल हो, जो अडोल हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहां बाप है वहां सदा ही अचल अडोल होंगे, क्योंकि क्यों होंगे, जब जहां सर्वशक्तिमान साथ होगा वहां सर्वशक्तियां होगी। सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। भगवान कहाँ रहता है? जहां सर्वशक्तियां है वहां पर सर्वशक्तियां होगी। वो रहता कहाँ है अशोक भाई? बाबा रहते कहाँ है? परम धाम में। कहानियों में कहते हैं कि एक समय था जब भगवान इस धरती पर निवास करते थे। एक समय था जब भगवान इस धरती पर निवास करता था, पर उसे अपनी जगह बदलनी पड़ी। फिर क्यों? क्योंकि लोग उसके घर में 24 घंटे आना जाना चालू रहता था। कोई कहता था मेरी हाइट कम है, कोई कहता था मेरी हाइट बड़ी है, कोई कहता था मैं पतला हूँ, कोई कहता था मैं दुबला हूँ, कोई कहता था बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, तो कहते थे बच्चा नहीं चाहिए। दिन रात उसको परेशान करते रहते थे। तो उसने फिर सोचा एक दिन कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, बहुत हो गया, टू मच, ये मनुष्य को जो भी दो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है इसका मन, मैं क्या करूं, मैं अपनी जगह ही चेंज कर देता हूँ, ये मांगते ही रहते हैं जब देखो तब। तो जीसस क्राइस्ट आते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम माउंट एवरेस्ट में चले जाओ। वो कहता है आइडिया तो अच्छी है, परंतु मनुष्य वहां तक भी पहुंच जाएगा एक दिन, कहानी पुरानी है, तब तक पहुंचा नहीं था। तो मोहम्मद कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम चांद पर चले जाओ। तो भगवान कहता है कि मनुष्य वहां भी एक दिन पहुंच ही जाएगा। ऐसे कई सारे पैगंबर और धर्मात्माएं आते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं भगवान को। फिर एक बूढ़ा आदमी आता है, कहता है एक जगह ऐसी है कि जहां मनुष्य कभी नहीं पहुंचेगा, वहां बैठ जाओ, तुम उसी के दिल में बैठ जाओ अंदर। वो सब जगह ढूंढते ही रहेगा सारी उम्र, पर अंदर कभी झांक कर देखेगा ही नहीं, उसके ही हृदय में बैठ जाओ। सारी दुनिया ढूंढेगा पर वहां नहीं ढूंढेगा। तब कहीं भगवान जाकर सोचता है कि हाँ ये जगह ठीक है, और तब से फिर भगवान मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गया, और मनुष्य बस ढूंढते ही रहता है, उसे ढूंढते ही रहता है। जिस दिन पाएगा पता चलेगा कि वो तो यही है। गॉड इज नॉट अ पर्सन बट प्रेजेंस, ऐसा कहा जाता है भक्ति में। वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, परंतु एक प्रेजेंस है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो चले, ऐसा भक्ति में मान्यता है। वो प्रेजेंस है, उसको फील करना है कि वो है, और ये फीलिंग ही शक्तिशाली बना देगी। तो कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। ये जो साथ है ये भी एक प्रेजेंस की अनुभूति है। जहां बाप है वहां सदा ही अचल अडोल होंगे। जहां सर्वशक्तिमान होगा वहां सर्वशक्तियां होगी। सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एकरसस्थिति वाले, एकरसस्थिति अर्थात एक रस अर्थात एक बाप की याद में एक रस बोला है। रस मतलब क्या? एक और रस, दो दो शब्दों की संधि से शब्द बना है। एक और रस, एक में या एक से या एक के अंदर या एक से प्राप्त या एक में रस। रस अर्थात रस मतलब एक तो अर्थ है जूस, आम का जूस, अलग अलग रस, आम रस, गन्ने का रस, एक तो है रस। दूसरा रस अर्थात रस अर्थात सुख, टेस्ट। रस एक में सर्व रस, स्वाद। एक अर्थ होता है स्वाद भी हो सकता है, एक तो जूस, दूसरा स्वाद, तीसरा सुख। मुझे इसमें रस है। एक होता है इंटरेस्ट, इसको खेलकूद में ज्यादा रस है, इंटरेस्ट, रुचि। और रस अर्थात क्या कहा आपने? अनुभूति। और आसपास तो मतलब वो तो आगे का हो गया रस, मतलब वो आगे की स्टेप से रस। रस शब्दों से परे, क्यों? व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो है जो है वो वैसा ही है। वो उसका क्या बताएं? अभी गन्ने का रस कैसा है कैसे बताएं? जिसने पिया नहीं है उसको कैसे हम बताएं, किससे उसकी उपमा करके और क्या बताएं। हाँ,
खीर कैसी है? बतक जैसी है।
खीर कैसी है? बदक जैसी है। बदक कैसा है? दूध जैसा है। दूध कैसा है? सफेद है। सफेद कैसा है?
तेरा है ना, वो नहीं कहेंगे।
इस तरह से वो जो दिखाते हैं ना, तो उंगली क्या कहते हैं, बदक कैसा है? हाँ, दूध कैसा है? सफेद है। सफेद कैसा है? बदक जैसा। तो बदक कैसा है? ये मेरी उंगली पकड़ो। वो अंधा आदमी को जब दावत के लिए बुलाता है ना एक व्यक्ति अपने घर, और खीर खिलाता है, वो जन्मांध है, उसको पता ही नहीं खीर कैसी है, तो पूछता है खीर कैसी है, वो कहता है कि सफेद। सफेद कैसा है? तो दूध के जैसा। दूध कैसा? सफेद है। बदक के जैसा सफेद। तो बदक कैसा है? अपनी उंगली देता है तो कहता है हाँ अभी मुझे समझ में आया, दूध जो है ना ये ऐसा है टेढ़ा उंगली जैसा। तो शब्दों से परे उसको व्यक्त ना किया जाए, उसको शब्दों में लाते लाते उसका अर्थ खो जाता है। यहाँ बाबा कह रहे सदा एक रस अर्थात एक में सारे रस की अनुभूति, एक में सारे इंटरेस्ट, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व सुख, एक की याद, एक के प्रति समर्पण भाव, एक से ही सर्व प्राप्तियां, एक से ही सर्व उपलब्धियां,
संसार
एक में ही संसार, एक कपाट रस। एक रस अर्थात ये एक दूसरा अर्थ है, नीचे
ऊपर
ऊपर
जाके
नहीं,
नीचे नहीं।
कांस्टेंट सेम रस, वो जूस रसना, वही सुख टेस्ट आनंद मगन अवस्था। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले। एक रस अर्थात ऐसा भी नहीं कि अलग अलग रसों में नहीं, ये का और एक अर्थ है, आज ये रस कल वो रस कल तीसरा रस कल पांचवा रस, ऐसे ये नहीं, एक ही रस हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता, थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। संसार के जो रस है वो अल्पकालीन सुख देने वाले हैं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है। दूसरे रस कौन से?
देखने
देखने का रस, सुनने का रस, स्पर्श करने का रस, बोलने का रस,
का
इंद्रियों से उत्पन्न जो भी रस है वो एक। और संसार में कौन से रस है? वस्तुओं के रस। हाँ, वो सारे इंद्रियों में सब आ गए, इंद्रियों से, विषयों से। दूसरे कुछ इच्छाएं जो है उससे असंतुष्टि, जो नहीं है वो चाहिए। हमारे पास जो नहीं है वही हमें चाहिए रहता है, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, ज्ञान की भी कोई भी चीज हो सकती है। साधन तो है ही, पर ज्ञान का चीजें अति सूक्ष्म हो जाती है। जैसे कल की मुरली है परंतु अगर आज की नहीं मिली तो आज की अब भी चाहिए,
वो तो अच्छी बात।
अच्छी बात तो है, पर उससे परेशान होना कि मिली क्यों नहीं,
हाँ, परेशान नहीं होना।
पड़ी, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि वो मिलने के बाद उसके ऊपर थोड़ा उसको ग्रहण या धारण करने वाले हैं। वो कल की तो है, कल की आई, थोड़ा सा पढ़ लिया और हो गया पूरा, उसका रस पूरा हो गया, एक बार सुन लिया रस पूरा हो गया, अभी तुरंत दूसरी चाहिए। और जब तक दूसरी नहीं मिलती तब तक बेचैनी है कि वो क्यों नहीं मिल रही है, वो किसके पास है, अच्छा उनको मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली, हमें भी चाहिए, हमें भी हार्ड कॉपी चाहिए। जब तक हमें नहीं मिलती, और जैसे मिली, मिलने के बाद एक बार पढ़ लिया पूरा हुआ, जैसे कि पूरा ग्रहण कर लिया एक ही बार में। देखा जाए तो एक ही मुरली एक हफ्ते तक चलनी चाहिए, क्योंकि उसमें टॉपिक्स कितने सारे हैं, पूरे हुए कहाँ, एक ही मुरली में 30 टॉपिक्स है, 40 टॉपिक्स है, 20 टॉपिक्स है,
8-10 लाइन बहुत है।
फिर एक एक 8-10 लाइन कितनी कितना उसका विस्तार हो सकता है उसमें, वो तो समझ में नहीं आया। खाली पढ़ा, पढ़ना तो कुछ जैसे कुछ है नहीं, हाथ में थोड़ी आता है कुछ, केवल पढ़ने या सुनने मात्र से। पीपत राम रस वो पीने की वस्तु है, पढ़ने की नहीं। पी लिया क्या? कभी हम सोचते हैं कि रोज एक एक अव्यक्त वाणी रहनी चाहिए और संडे के दिन साकार वाणी। क्योंकि रोज साकार वाणी सुनते सुनते इतना वो ये हो गया है, रिपीटिशन, वही 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 वही, बहुत सारी बातें रिपीट होती है उससे। ऑलमोस्ट सारी बातें सबको पता है, कहने का ढंग अलग अलग है, तो ध्यान देना कम हो जाता है रिपीटिशन की वजह से। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस अर्थात अचल अडोल। तीन शब्द है पूरे ग्रुप के साथ बात करते हुए, एक अचल, दूसरा अडोल और तीसरा एक रस। ये तीनों ही शब्द हजारों बार हमने सुने हैं, नया कुछ नहीं है शब्दों में, परंतु हमारा अंडरस्टैंडिंग कितना है उसके बारे में, इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना से उससे ज्यादा समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम ही पढ़ो पर उसका विस्तार करो और उसको ज्यादा समझो। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम कौन है, अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली है। तो यहाँ बाबा ने एक प्रश्न जो पूछा है वो है, एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? ये प्रश्न स्वयं स्वयं से पूछो, किन किन रसों में हमारी बुद्धि जाती है? हमारी बुद्धि प्राय उन चीजों में जाती है जो हमारे पास है नहीं, जो दूसरों के पास है, ऐसी वस्तुएं, पदार्थ, वो सारी बातें। वो दिखाया है एक पत्थर तोड़ने वाला रहता है, इतना दुखी रहता है क्योंकि इतना पत्थर तोड़ता है दिन भर, परंतु पैसे कहाँ मिलते हैं कुछ खास, उसका जो मुनाफा या जो भी उसको मिलता है वो बहुत कम मिलता है, इसके लिए इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है। एक बार देखता है एक अमीर आदमी को आराम से अपने अपने जो भी उसका स्थान है वहां पर बैठा हुआ है, नौकर चाकर है, सोचता है कि मैं भी ऐसा अमीर हो जाऊं तो अचानक दिखाया एक फरिश्ता प्रकट होता है और उसको कहता है तथास्तु, और वो तुरंत अमीर बन जाता है। वैसे ही नौकर चाकर, वैसे ही बड़ा बंगला, वैसे ही वो सोफा और सब कुछ उसे मिल जाता है और बड़े सुख से रहता है। कुछ समय के बाद देखता है एक राजा जा रहा है, राजा की सवारी जा रही है, राजा के आगे पीछे कितने सारे सैनिक हैं, उसका इतना बड़ा रथ है, सिर पर मुकुट है, ये साहूकार तो है पर मुकुट नहीं है सिर पे। सोचता है ये राजा मेरे से अधिक शक्तिशाली है, मेरे से अधिक सुखी है, मैं यदि ये राजा बन जाऊं तो कितना अच्छा होता। तुरंत फरिश्ता फिर से प्रकट होता है तथास्तु, तो तुरंत राजा बन जाता है और देखता है वो उसका भी रथ है, उसका भी मुकुट है, उसके भी आगे पीछे सैनिक है और वो जा रहा है रास्ते से। परंतु सूरज की तेज किरणें उसके शरीर पर पड़ती है और पसीना आता है और उसका पूरा दिमाग, यहां से उसका चमड़ी जलने लगती है, इतनी तेज किरणें होती है। सोचता है ये सूरज मेरे से अधिक शक्तिशाली है, उसके पास तो वो सब चीजें है जो मेरे अधिकार में नहीं है। मैं यदि ये सूरज होता तो शायद इस संसार का सबसे सुखी, सबसे शक्तिशाली होता व्यक्ति। तुरंत फरिश्ता प्रकट होता है और कहता है तथास्तु, सूरज बन जाता है, इस संसार में सबसे शक्तिशाली, तेजस्वी। परंतु अभी और एक कठिनाई होती है, वो कौन सी? उसके बीच में बादल आ जाते हैं। मैं इतना शक्तिशाली पर बादल मुझसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मेरी किरणों को रोककर ये किरणें वापस मेरे पर आ रही है। तो कितना अच्छा होता यदि मैं बादल हो जाता है, और फिर तो क्या, बादल बारिश बरसाता है, चारों ओर बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, सारी खेतों को नष्ट कर देता है और बड़ा खुश होता है कि मैं कितना शक्तिशाली हो गया। है कोई इस संसार में जो मेरे से अधिक शक्तिशाली है? पर देखता ये पत्थर, ये चट्टान, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर सोचता है कि कितना अच्छा होता कि मैं चट्टान बन जाऊं। और वो फरिश्ता फिर प्रकट होता है, कहता है तथास्तु, और वो चट्टान बन जाता है। और अब तो क्या, सूरज की किरणें भी उसे पिघला नहीं सकती, ना ही बारिश उसे कुछ कर सकती है। परंतु उधर से जंगल से आता हुआ एक लकड़ी, एक पत्थर तोड़ने वाला अपनी हथौड़ा और छन्नी लेकर आते हुए दिखता है और पत्थर तोड़ने लगता है। सोचता है कि ये देखो मेरे से अधिक शक्तिशाली है, क्यों ना मैं फिर से वही पत्थर तोड़ने वाला बन जाऊं। वो फिर से वही पत्थर तोड़ने वाला बनता है। कहानी कहती है कि अब वो बहुत संतुष्ट है, पैसे बहुत ही कम मिलते हैं, सारे दिन भर मेहनत करता है, परंतु उसे अब आभास हुआ है कि ये पत्थर कहने का भाव है, हम जहाँ है, जो कुछ हमें प्राप्त है, जिस स्थान पर हम है, जिन लोगों के साथ हम है, यही सबसे अच्छे है। वही दिस इज द बेस्ट प्लेस, इज द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग। जहाँ आप है वही बेस्ट प्लेस है, वही सबसे सर्वोत्तम स्थान है। जिन लोगों के बीच में आप है वही सबसे अच्छे लोग है। जिन परिस्थितियों में आप है वही सबसे अच्छी परिस्थिति है। जिस सेंटर पर हम रहते हैं वही सबसे अच्छा सेंटर है, वही सबसे अच्छी दीदी है। अगर भरोसा नहीं तो फिर उस आदमी जैसा एक एक इच्छा करते जाओ, फिर पता चलेगा अंत में यही सबसे अच्छा सेंटर है और यही सबसे अच्छी दीदी है और ये स्थान और ये परिस्थिति, ये सब कुछ यही अच्छा है। उसी तरह भगवान के लिए भी ये अच्छा नहीं है, चलो दूसरे पास जाओ। एक एक के पास जाते जाओ जाते जाओ, फिर अंत में आओगे और कहेंगे कि हाँ एक तू ही ठीक है, कभी कुछ मांगता नहीं, बस देते जाता है और देते जाता है। हम उसको देते क्या है? कुछ भी तो नहीं देते, फिर भी हमें देते जाता है। कमल भाई हम देते क्या है उसको? चावल, कंप्लेंट की है बाबा ने, चावल देते हो, वो भी कैसे सूखे, वो भी कैसे मिट्टी वाले, संडे की मुरली, ये तुम मुझे देते हो। जब ऐसे कच्चे सूखे और मिट्टी वाले चावल तुम्हारे पास रहते हैं तब बाप इस संसार में आते हैं, ये तुम मुझे देते हो। धन भी कौन सा है तुम्हारे पास? काला धन, ब्लैक मनी, आरोप लगाया है बाबा ने, जबरदस्त एलिगेशन किया है कि जो साहूकार है उनके पास 90% काला धन है। तो तुम देते क्या हो? कुछ भी नहीं देते हो। तो सबसे अंत में पता चलेगा सब रस एक ही में है, सब सुख, सब रस, सब आनंद, सब संतोष, सब एक में है। संसार असार है, संसार अनित्य है, संसार दुखमय है। इसके लिए मंजू बहन इस संसार से क्या नष्ट मोहा, मोह की रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग में बहुत दुख तकलीफ, मुरली में क्या है? नुकसान। व्यापारी है बाबा, वो व्यापार की भाषा बोलता है। मोह की रग में बहुत नुकसान है, व्यक्ति वैभव संबंध में आ सकती है तो माया आ सकती है। कुमार अर्थात सदा चरणोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। तो उसके साथ का अनुभव करना, जहां जहां हम चल रहे हैं वो हमारे साथ है, ये अनुभव, प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि वो हमारे साथ सदा है, सदा। सेंट बर्नार्ड करके एक संत हुआ है, रोमन कैथोलिक सेंट, उसने किताब लिखी है द फैमिली दैट ओवरटुक क्राइस्ट, एक बार बताया था यहां पर। वो जो किताब है सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लायरवॉक्स, उस किताब में दिखाया है वो सात भाई है। पहला भाई, बड़ा भाई, सबसे पहले समर्पित हो जाता है उस मठ में, उस आश्रम में, उस मोनेस्ट्री में, उस सन्यासियों के दल में, और बहुत बड़ा सन्यासी वो बनता है। उसमें दिखाया है उसके भगवान के प्रति लिखे हुए खत, एक एक खत इतना डीप गॉडली लव से भरा हुआ है, ईश्वर के प्रति उसका प्रेम वो अर्पण करता है कि कैसे मुझे ये प्रेम है तुमसे, क्या मैं करूं तुम्हारे लिए, एक एक खत है उसका लिखा हुआ गॉड के प्रति। तो दिखाया है उसमें सात भाई है, पहला भाई सन्यासी बनता है और सब कुछ ईश्वर के प्रति अर्पित कर देता है, दूसरा उसको देखकर बनता है, तीसरा उसको देखकर बनता है, चौथा भी वैसा ही बन जाता है, पांचवा भी वैसा ही, छठवा भी वैसा है। तो जब से जो छोटा वाला रहता है, उसका नाम मैं भूल गया क्या था, बेनेडिक्ट या बेनेडिक्ट या बेंजामिन होता है शायद, ऐसा कुछ छोटा होता है, तो सोचते हैं उनका घर इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जमीन है, ये इसको दे देते, ये संभालेगा अपना लौकिक का, हम लोग तो अभी ईश्वर की सेवा में है, तो ये है छोटा है अभी, इसको इतना क्या समझ में आता है, इसको बचपन से ही लगा देंगे इसमें ताकि ये संभालते रहे, हम अपना ईश्वरीय कार्य करते रहे, तो उसको वो सारा दे देते छोटे भाई को। तो उसमें एक वाक्य है, वो कहता है छोटा भाई अपने सभी भाइयों से, यू टुक द हेवन एंड गिव मी द लैंड, तुमने स्वर्ग ले लिया और मुझे जमीन देते हो, मैं भी आ रहा हूं, और वो भी निकल जाता है उनके साथ। द फैमिली दैट ओर टू क्राइस्ट, ऐसा परिवार जो क्राइस्ट से भी आगे चला गया, जीसस क्राइस्ट ने जितना त्याग किया उससे भी आगे चला गया ये परिवार, ऐसा उसका वर्णन है। एक एक पत्र जो सेंट बर्नार्ड, जो बीच का भाई है, वो दूसरे या तीसरे नंबर का है, उसके लिखे हुए खत है कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, बहुत डीप मतलब गॉडली लव, डिवाइन लव से परिपूर्ण ऐसे वो खत है। एक एक वो लिखता है एक जगह कि ऐसा तीर मुझे चुभा है ईश्वरीय प्रेम का कि खून बहा जा रहा है, द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव, घाव ऐसा है ये कि ये भर ही नहीं रहा है, क्या इलाज करूं मैं, ईश्वरीय प्रेम का तीर जो चुभा है बह रहा है बह रहा है बह रहा है। द फैमिली दैट ओर टू क्राइस्ट, सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लायरवॉक्स। तो ईश्वरीय प्रेम एक रसस्थिति, उसमें ये जो साथ की बात है उसने वहां पर वो लिखा है कि मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि वो मेरे साथ है, मैं जहां जा रहा हूं वो मेरे साथ है, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। ये वो आत्माएं हैं द्वापर से अब तक आई हुई कि जिन्हें भगवान के बारे में पता नहीं, जहां भगवान आया ही नहीं है संसार में, परंतु फिर भी ईश्वरीय प्रेम में डूबी हुई है, शायद वो इसी ब्राह्मण परिवार से गई हुई आत्माएं हैं जो भिन्न भिन्न धर्मों में अलग अलग रीति से इन्होंने भक्ति की और ईश्वर को याद किया। जहां बाप है वह सदा ही अचल अडोल होंगे, जहां सर्वशक्तिमान होगा वहां सर्वशक्तियां होगी, सर्वशक्तियों के आगे माया कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं, जो हलचल में आता है वह अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता, थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं, इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक स्थिति में स्थित रहने वाले, स्थिति रहने वाले। तो एक स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है, जब रस सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्रिय है, जिनकी एक रस स्थिति है वो बाप को प्रिय है, वो केवल जो केवल कहते रहते हैं बाबा बाबा चिल्लाते रहते हैं वो नहीं, बाबा को प्रिय देखो कौन है, जिसकी एक रस स्थिति है, स्थिति उसे प्रिय है, स्थिति का ड्रेस नया नहीं, स्थिति का ड्रेस। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक स्थिति में रहने वाले हैं। ओम शांति। मंडे को